प्राचीन भारत का इतिहास एक नजर में। तो सबसे पहले जानते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। उपनिषदों में अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे त्रिपिटक हैं। ये हैं सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। फाहेयान की प्रसिद्ध रचना फोक्यो की एवं या रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज है। हेनसांग का जो यात्रा वित्रांत है उसे सीयू की या एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। अलबरूनी की रचना तहकीके हिंद में गुप्तोत्तरकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। एक अज्ञात लेखक की रचना पेरिप्रस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों और वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। अब जानते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में या प्रागैतिहास के बारे में। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो था वो जौ था। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम से गर्त निवास तथा कब्रों में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का समूचा जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा से कांसे का इक्का, दर्पण, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कांसे की नग्न नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता तथा सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। लोथल से गोंदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से स्त्री पुरुष शवाधान यानी युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से अच्छे किस्म की जौ, तांबे का वाणाग्र तथा पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। सुरकोटदड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सैंधवकालीन लोगों ने ही लेखन कला का भी आविष्कार किया। वैदिक संस्कृति। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। ऋग्वेद की अनेक बातें जैन अवेस्ता से मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। दाशराग युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर युद्ध था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में सभा की 8 बार, समिति की 9 बार तथा विदत की 22 बार चर्चा की गई है। ऋग्वैदिक प्रशासन में सबसे प्रमुख पुरोहित हुआ करता था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता को वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। सोम की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में वरुण देवता को नैतिक नियमों का संरक्षक बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि के समस्त क्रियाओं का वर्णन मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का संकलन है। ग्रह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर काशनाथ थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जो कि इसके वास्तविक संस्थापक भी थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में, बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि जात्रक क्षत्रिय कुल के थे, माता त्रिशला, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी, संन्यास धारित किया 30 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग करके, मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में, स्थान पावापुरी नालंदा। महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, स्थान जरम्बिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। कैवल्य की प्राप्ति यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, इसके बाद इन्हें कैवलिन, जिन, अहर्त आदि नामों से जाने जाने लगा। पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। जमाली, चंदना, सुधर्मन, महासयग, कामदेव आदि इनके शिष्य थे। इनका उद्देश्य 2 जैन महासंगति हुई। प्रथम 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूल भृद्ध थे। द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य था धर्म ग्रंथों का संकलन और लिपिबद्धीकरण। त्रिरत्न होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य, और इसमें 4 पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए तथा अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा। ग्रंथ जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचित हैं, और जैन धर्म 2 दिगंबर और श्वेतांबर में भी बट गया था। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारित करते हैं तथा दिगंबर वस्त्र धारित नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु, पिता शुद्धोदन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक, माता माया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पालन पोषण गौतमी प्रजापति मौसी थी, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह यशोदा पत्नी, पुत्र का नाम राहुल, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया बिहार में इस घटना को संबोधी कहा। प्रथम उपदेश श्रीपत्तन सारनाथ में, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 483 ईसा पूर्व में दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थान कुशीनगर, यहां इनके परिनिर्माण हुआ। बुद्ध संघ और धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक पाली भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विनय पिटक, सुत्ति पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध प्रतीक जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। इनके अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। इसके बाद 16 महाजनपद आते हैं और उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो मगध था उसका उत्कर्ष हुआ और बहुत अधिक रीजन थे। एक तो लोहे की बहुतायत होना, वहाँ पे कृषि में लोहे का प्रयोग होना और रिच होना इस वजह से, और वहाँ के शासक मजबूत होना, ये काफ़ी रीजन थे मगध के उत्कर्ष के। तो अब देखते हैं मगध में कौन सबसे पहले था। हर्यक वंश था 544 से 412 ईसा पूर्व में। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, उपनाम इसका श्रेणिक था, राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेटक की पुत्री चेरन्ना तथा पंजाब की राजकुमारी शेमभद्रा से विवाह कर साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद अजातशत्रु आए, बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने और उसके बाद वो बैठे। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की और वो मगध की गद्दी में बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। नागदशक ने उदयन की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को शिशुनाग ने 412 में पदस्थ कर दिया और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन को महापदम नंद ने मार दिया, वो गद्दी पे बैठा। घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था, इसी वंश का, नंदवंश का, और वो जो था नंदवंश का अंतिम शासक भी था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज भी कहा है। घनानंद को मारा फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसके काल का सिकंदर था। सिकंदर के बारे में जानते हैं, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का वितस्ता का युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई थी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा। अब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य।